नमस्कार भारत, आज है 7 अक्टूबर दिन रविवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के एक जज को सीनेट में बहुत कम अंतर से मंजूरी मिली, राष्ट्रपति ट्रंप ने जताई खुशी।
The ayes are 50, the nays are 48. The nomination of Brett M. Kavanaugh of Maryland to be an associate justice of the Supreme Court of the United States.
भारत में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान किया। बीजेपी या कांग्रेस, कौन किस पर पड़ेगा भारी?
दो पार्टियों के बीच में सब पार्टी मुझे फंसती हुई नजर आती है, लेकिन नुकसान इसमें उन पार्टियों को ज्यादा होता है जो सत्ता में होती है।
पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों की साप्ताहिक समीक्षा के साथ ही होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, नवीन नेगी से। फेसबुक ने कहा है कि वह भारत में अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले राजनीतिक एजेंडे को रोकने के मकसद से एक टास्क फोर्स का गठन करेंगे। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी रिचर्ड एलन ने दिल्ली में कहा कि उनके सैकड़ों विशेषज्ञ चुनाव से जुड़ी भ्रामक सामग्री को अपनी नज़र बनाए रखेंगे। उन्होंने कहा कि उनके सामने असली चुनौती राजनीतिक खबरों और राजनीतिक प्रोपेगेंडा के बीच फर्क करने की होगी। अमरीकी सांसद ने कल सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर ब्रेट कैवनॉक के नाम को मंजूरी मिल गई। ब्रेट को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समर्थन दिया था। इसे ट्रंप की जीत के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल ब्रेट कैवनॉक पर यौन उत्पीड़न से जुड़े आरोप लगे थे, जिसके चलते उनकी नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन दो प्रमुख सीनेटरों के ब्रेट के पक्ष में आने के बाद उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। हालांकि कुछ सांसद शनिवार को भी संसद में उनकी नियुक्ति का विरोध करते रहे। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो उत्तर कोरिया की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वे उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के साथ मुलाकात करेंगे। उत्तर कोरिया उनके पूर्वी एशिया दौरे का पहला पड़ाव है। यात्रा शुरू करने से पहले पोम्पियो ने टोक्यो में पत्रकारों से कहा कि वे इस उम्मीद के साथ उत्तर कोरिया जा रहे हैं कि वहां वे किम जोंग उन और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच दूसरी मुलाकात का कार्यक्रम तय कर पाएंगे। पोम्पियो ने साथ ही कहा कि वे उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को बंद करने पर भी काम जारी रखेंगे। हालांकि उत्तर कोरिया का कहना है कि वे तब तक अपने परमाणु हथियार नहीं छोड़ेगा जब तक अमरीका उनके ऊपर प्रतिबंधों को लगाना बंद नहीं करेगा। सऊदी अरब के जाने माने पत्रकार जमाल खाशोगी की गुमशुदगी का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। उनकी तलाश अभी भी जारी है। खाशोगी सऊदी के क्राउन प्रिंस और वहां की सरकार के कड़े आलोचक रहे हैं। मंगलवार को वे तुर्की के शहर इस्तांबुल में स्थित सऊदी के वाणिज्य दूतावास में गए थे, लेकिन उसके बाद से उनका कुछ पता नहीं है। एक तरफ जहां सऊदी प्रशासन का कहना है कि खाशोगी दूतावास में प्रवेश करने के कुछ ही देर बाद बाहर चले गए थे, लेकिन उनके बाहर निकलने के कोई सबूत नहीं है, वहीं दूसरी तरफ तुर्की पुलिस के सूत्रों का मानना है कि इमारत के भीतर ही उनकी हत्या कर दी गई है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। मिस्र की एक अदालत ने मानवाधिकारों से जुड़े वकील और पूर्व में देश के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ चुके खालिद अली के विदेश जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अदालत का कहना है कि खालिद अली उस मामले में शामिल हैं जिसमें एक गैर सरकारी संगठन पर राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे हैं। ब्राज़ील में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की पूर्व संध्या में दक्षिणपंथी दल के उम्मीदवार जेयर बोल्सोनारो ने कहा कि वे अपराध और हत्याओं के मामलों से निपटने पर जोर देंगे। बोल्सोनारो राजनेता बनने से पहले सेना में कैप्टन थे। उन्होंने पिछली सरकार पर अपराधियों के प्रति हल्का रवैया अपनाने के आरोप लगाए। वहीं दूसरी तरफ बोल्सोनारो के विरोध में हजारों महिलाओं ने साओ पाओलो की सड़कों पर विरोध मार्च निकाला। इन महिलाओं का कहना है कि बोल्सोनारो नस्लभेदी और समलैंगिकता विरोधी हैं। नाइजीरिया के मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी को ऑल प्रोग्रेसिव कांग्रेस पार्टी की ओर से अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार के तौर पर चुना गया है। हालांकि इन चुनावों में उनके सामने कौन चुनौती पेश करेगा अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। मुख्य विपक्षी दल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अपने उम्मीदवार का चयन कर रही है। उसके पास लगभग दर्जन भर उम्मीदवारों के नाम हैं। इनमें पूर्व उपराष्ट्रपति अतिकू अबू बकर सबसे आगे माने जा रहे हैं। मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप यूसी ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की है जिसके तहत देश के प्रमुख विपक्षी दल रेनामो की सैन्य इकाई को निरस्त किया जाएगा। सत्ता पर काबिज फ्रेलिमो पार्टी ने रेनामो के साथ 16 साल तक गृह युद्ध किया जो 1992 में समाप्त हुआ था। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है, आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत। संदीप सोनी के साथ आप हमें रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन सकते हैं इस समय लाइव। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के एक जज को सीनेट में बहुत कम अंतर से लेकिन मंजूरी आखिरकार मिल ही गई। राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रेट कैवनो को इसके लिए बधाई दी है, लेकिन इससे डेमोक्रेट उतने ही मायूस हुए हैं। उनका कहना है कि वो जज कैवनो के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया चलाने का प्रयास करेंगे। पूरे मामले पर न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज के पद के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत ब्रेट कैवनो को सेनेट में मंजूरी के लिए 50 वोट हासिल हुए, जबकि 48 वोट उनके खिलाफ डाले गए।
The ayes are 50, the nays are 48. The nomination of Brett M. Kavanaugh of Maryland to be an associate justice of the Supreme Court of the United States is confirmed.
इस तरह डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ने इस मुद्दे पर तकरीबन अपनी पार्टी के रुख के हिसाब से वोट दिया। कहा जा रहा है कि पिछले 100 साल से अधिक के अरसे में किसी सुप्रीम कोर्ट जज को पद की मंजूरी के लिए समर्थन और विरोध में सबसे कम अंतर के वोट पड़े। अमरीकी सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी के 51 सदस्य हैं, लेकिन अलास्का की सेनेटर लीजा मरकाउस्की ने कैवनॉ का विरोध किया। एक डेमोक्रेटिक सेनेटर वेस्ट वर्जीनिया के जो मैनशिन ने अपनी पार्टी की लाइन का विरोध करते हुए कैवनॉ के हक में वोट दिया। मोंटाना के एक रिपब्लिकन सेनेटर सेनेट की वोटिंग में परिवार में शादी के कारण शामिल नहीं हो पाए। सुप्रीम कोर्ट की इमारत के अंदर मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने ब्रेट कैवनॉ को सुप्रीम कोर्ट के 114वें जज के पद की शपथ भी दिला दी। सेनेट में कैवनॉ की मंजूरी की प्रक्रिया में उस समय नया मोड़ आ गया था जब दो हफ्ते पहले एक महिला क्रिस्टीन फोर्ड ने कैवनॉ के खिलाफ यौन दुराचार के आरोप लगा दिए थे। फोर्ड का कहना था कि कैवनॉ ने 36 साल पहले हाईस्कूल की एक पार्टी में उनको दुराचार का निशाना बनाया था। उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कैवनॉ के खिलाफ FBI की नई जांच का हुक्म दिया था, जिसकी रिपोर्ट शुक्रवार को पेश की गई, जिसे देखने के बाद सेनेटरों ने कैवनॉ के बारे में दो दिन बहस की और फिर शनिवार को बहुत ही कम अंतर से उनको मंजूरी मिल गई। राष्ट्रपति ट्रंप ने सेनेट में मंजूरी मिलने के बाद कैवनॉ से बात की और उन्हें बधाई दी।
कैवनॉ एंड ही इज अ टेरिफिक मैन, टेरिफिक पर्सन। आई जस्ट कांग्रेचुलेटेड हिम। आई सेड कांग्रेचुलेशंस, इट वाज well fought. I mean, who would have thought a thing like that could have happened, what he's been through.
Democrats Kavanaugh ko Supreme Court ke judge ke pad ke layak nahi samajhte hain aur unka ye aitraz bhi hai ki FBI ne Kavanaugh ke bare mein theek se jaanch nahi ki. अब डेमोक्रेट्स को ये उम्मीद है कि वो नवंबर में होने वाले अमरीकी कांग्रेस के चुनाव में प्रतिनिधि सभा में बहुमत हासिल करने के बाद ब्रेट कैवनॉ के खिलाफ जांच शुरू करवाएंगे और महाअभियोग भी चलाएंगे। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
खबर सच है अगर BBC पर है।
भारत में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों, जबकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में एक ही चरण में मतदान होगा। तेलंगाना को छोड़कर बाकी 4 राज्यों में नवंबर में मतदान होगा और वोटों की गिनती 11 दिसंबर को एक साथ होगी। इन 5 राज्यों में से 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। उतना ही जोर कांग्रेस भी लगा रही है, लेकिन राह इतनी भी आसान नहीं। सुनिए मानसी दास की रिपोर्ट।
इस बार विधानसभा चुनावों में मुद्दे गौण हैं। बातें राजनीतिक समीकरणों की हो रही है, गठबंधन की हो रही है और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और सरकार से नाराजगी की हो रही है। ऐसे में सियासी और सामाजिक समीकरण किसके पक्ष में दिखते हैं? वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा कहते हैं,
भ्रष्टाचार है वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं होता जितना बड़ा ये महंगाई का मुद्दा होता है। दूसरे मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी को झेलने पड़ेंगे वो है जो कृषि के क्षेत्र में एक क्राइसिस है, तो दो पार्टियों के बीच में सब पार्टी मुझे फंसती हुई नजर आती है, लेकिन नुकसान इसमें उन पार्टियों को ज्यादा होता है जो सत्ता में होती है।
मध्य प्रदेश में 2 साल पहले मंदसौर में बड़े पैमाने पर किसानों ने प्रदर्शन किए थे। वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामा सेशन कहती हैं कि केंद्र सरकार ने फसल पर MSP लगातार बढ़ाए हैं, लेकिन किसान इससे संतुष्ट नहीं है।
घड़ी घड़ी सेंटर अपना कुछ रिस्पॉन्सेज देती थी, MSP का दाम बढ़ाना, सब्सिडीज की भी बात हो रही थी, लेकिन वो पूरी तरह लागू नहीं हुआ। क्या किसान ये सबसे संतुष्ट होंगे जबकि उनके जो मूल प्रश्न है, जो मूल मुद्दे हैं, वो अभी तक पूरी तरह वो नहीं हुए हैं।
मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान 15 साल से सत्ता में बने हुए हैं और उनके सामने एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर आ सकता है। विनोद शर्मा कहते हैं,
हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान ने औरों के मुकाबले अच्छा राज्य दिया हो, लेकिन आज के दिन ऐसा लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है और कुछ मुद्दे उनके खिलाफ बड़े मुद्दे हैं, खासकर किसानों का मुद्दा और जात वाला मुद्दा जो है।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कई बार मंदिरों में नजर आए हैं मध्य प्रदेश में, खासकर वो नर्मदा आरती करते भी नजर आए, लेकिन क्या वो यहाँ वोटरों को लुभा पाएंगे? राधिका रामासेशन कहती हैं,
गुजरात में तो जरूर इसका काफी पॉजिटिव असर हुआ था, क्योंकि एक जो आरोप बीजेपी हमेशा लगाती रही है कि कांग्रेस जो है वो मुसलमानों की पार्टी है, क्रिश्चियन की पार्टी है, तो राहुल गांधी ने इस बार लगातार साबित कर दिया कि कांग्रेस जो है वो हिंदू पार्टी है, हिंदुओं के इंटरेस्ट भी उसके वो कायम रखेगी। इसके पहले दिग्विजय सिंह जी ने भी अपना पूरा नर्मदा परिक्रमा किया था, लंबा 5-6 महीना चलते चलते किया था, तो उसका भी पॉलिटिकली मकसद था, क्योंकि जहां भी गए वहां पे कांग्रेस यूनिट को फिर खड़ा की उन्होंने कोशिश किया।
छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहां भी किसानों के मुद्दे कम बड़े नहीं हैं और यहां पे कांग्रेस और बीजेपी के अलावा एक तीसरा खेमा भी तैयार हो रहा है। वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश बताते हैं,
छत्तीसगढ़ को माना जाता है उसके बड़े हल्के को कि ये धान का कटोरा है, लेकिन वहां के किसान कटोरा लेकर घूम रहे हैं कि किस तरह से उनकी हालत ठीक हो। छत्तीसगढ़ में भी किसानों ने आत्महत्याएं।
राधिका रामासेशन का कहना है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा मजबूत स्थिति में है ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ कांग्रेस भी अधिक मजबूत स्थिति में नहीं दिखती।
मैं जहाँ तक समझती हूँ, रमन सिंह जी का बड़ा एडवांटेज है कि कांग्रेस बटा हुआ है, राहुल गांधी जी ने प्रयास तक नहीं किया अजीत जोगी को वापस लाने को, और नतीजा ये हुआ कि मायावती अजीत जोगी के साथ समझौता कर ली तो वो एक थर्ड फ्रंट सा बन गया छत्तीसगढ़ में। और बीएसपी का बेस है, ऐसा नहीं कि बीएसपी का बेस नहीं है, भले ही उन्हें एक या दो सीटी मिले होंगे पिछले चुनाव में, लेकिन बेस तो उनका कायम है, दलित बेस, और अजीत जोगी जी का भी खासकर दलितों में ही ज्यादा पकड़ है। जो कांग्रेस है उनके जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल, वो बैकवर्ड कास्ट से हैं, कुर्मी हैं, वो जो बैकवर्ड कास्ट है वोट है छत्तीसगढ़ में, वो उसका भी बहुत महत्व है। लोग खाली आदिवासी वोट पे ध्यान देते हैं, लेकिन नहीं, एक बड़ा चंक है बैकवर्ड कास्ट वोट।
भाजपा शासित एक और प्रदेश राजस्थान की बात करें तो यहाँ मौजूदा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। उर्मिलेश कहते हैं,
बीजेपी के अंदर भी बहुत सारे लोग मानते हैं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की जो मुख्यमंत्री है, उसकी जो नेता, वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जो भाजपाई मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह, इनसे भी ज्यादा अनपॉपुलर हो चुकी हैं। स्वयं बीजेपी के लोग मानते हैं कि हम सबसे अगर बुरी स्थिति में कहीं हैं तो राजस्थान है।
लेकिन वसुंधरा राजे सरकार की नाकामियों को भुनाने के लिए कांग्रेस कितनी तैयार है?
बीजेपी और कांग्रेस में अंतर एक है कि चूंकि 5 साल से वो अपोजिशन में है कांग्रेस पार्टी के लोग, और वो 5 साल से सत्ता में है, तो अगर इतने सालों की एंटी इनकम्बेंसी इन 5 सालों में अगर सारी कंसंट्रेट होगी तो जाहिर है कि वसुंधरा राजे के लिए बहुत भारी पड़े। और ऐसी स्थिति में अशोक गहलोत जैसा एक पॉपुलर लीडर है, सचिन पायलट के रूप में कांग्रेस अध्यक्ष ने एक युवा चेहरा सामने लाने की कोशिश की है, दोनों में से किसी को चीफ मिनिस्टर के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है, यह भी एक स्ट्रेटेजिकली मुझे लगता है कि ये सही निर्णय है।
रही बात मिजोरम और तेलंगाना की तो वहाँ के राजनीतिक समीकरणों के बारे में उर्मिलेश कहते हैं,
जहाँ तक मिजोरम और तेलंगाना का प्रश्न है, चुनाव बहुत दिलचस्प है। मिजोरम में कांग्रेस के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, वो मजबूत स्थिति में है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन तेलंगाना देखने लायक चुनाव होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि टीआरएस और बीजेपी साथ आ सकती है, कांग्रेस और टीडीपी जो पारंपरिक एक दूसरे के राजनीतिक शत्रु रहे हैं वो शायद एक साथ दिखाई पड़ेंगे।
देखा जाए तो आने वाले चुनावों में जहां सत्ता पक्ष के लिए खुद को बनाए रखना बड़ी चुनौती है, विपक्ष के सामने चुनौती है कि वो सत्ता से नाराज तबकों को कैसे वोट में तब्दील करे। देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस भाजपा के सामने मौजूद चुनौतियों का फायदा ले सकेगी। मानसी दास, बीबीसी दिल्ली।
गुजरात के साबरकांठा जिले में पिछले हफ्ते 14 महीने की एक बच्ची के साथ कथित बलात्कार के मामले में बिहार के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद कई जिलों में प्रदर्शन हुए हैं। स्थानीय लोगों ने बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की है, जिसके बाद गुजरात पुलिस ने कम से कम 180 लोगों को हिरासत में लेने का दावा किया है। इस खबर पर और जानकारी के लिए मेरी सहयोगी मानसी दास ने स्थानीय पत्रकार भार्गव पारीक से बात की।
गुजरात के अंदर जिस तरह से परप्रांतियों को यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है, वो इसके अंदर कई ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार के साथ यहाँ से गुजरात से निकल के जा रहे हैं। भय का माहौल यहाँ पे बना हुआ है।
हमारा क्या कसूर है यहाँ से निकाला जा रहा? हमारे छोटे छोटे बच्चे हम कहाँ जाएंगे? जिसने किया उसको जो माना सो सजा दो। अपने देश जा रहे हैं और क्या है, निकाला है तो जाना पड़ेगा, क्या करें, जाना पड़ेगा बाबू जी, हमारा घर है तो आएंगे नहीं क्या?
हिम्मतनगर के शक्तिपुर इलाके के ये महिला है जो अपना घर छोड़ के उसको निकलना पड़ रहा है। उसके लिए ये बड़ी दिक्कत की बात यह है कि उसको गुजरात छोड़ के 10 साल के बाद जाना पड़ रहा है और उसके बच्चे की एग्जाम अभी आ रही है।
पुलिस से आपकी बात हुई, क्या क्या कहा पुलिस ने?
मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही शिवानंद झा से, जो गुजरात के डीजीपी है, उनसे बात की है।
हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि इस तरह के बनाव पुलिस बहुत कड़क रीते इसको दबाएगी। सोशल मीडिया की पोस्ट की मॉनिटरिंग जो है हमने अहमदाबाद साइबर सेल को दिया है और इस पोस्ट को एनालाइज करके जो ये सर्कुलेट कर रहे हैं उनके खिलाफ जहाँ जहाँ ऑफेंस दाखिल हो सकता है ऑफेंस दाखिल करके इस दिशा में भी कड़क कार्रवाई करने की सूचना दे दी गई।
गुजरात में 18 जगह पे लोगों पे हिंसा हुई है, पर प्रांतियों पे, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों पे, तो उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। उसके तहत 150 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
गुजरात में खासकर साबरकांठा में इस तरह की शायद ये पहली घटना है, क्या वजह हो सकती है इस बात की?
मैंने जब बात की समाजशास्त्री गौरांग जानी से, उनका ये कहना है कि गुजरात के अंदर ये आजादी के बाद पहली बार ये घटना हुई है।
गुजरात में जब ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद जो दूसरा इन्वेस्टमेंट हुआ बाहर से, बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां कॉर्पोरेट्स यहाँ पर फैक्ट्री बनाने लगी, उसमें गुजराती लोगों को जॉब देने का जो वचन सरकार ने दिया था वो नहीं हो पाया, चाहे वो नैनो कार का हो या दूसरी किसी कंपनी का हो या जनरल मोटर्स का हो। तो मुझे लगता है कि इससे एक किस्म का जो स्थानीय लोग है जिनकी जमीन गई है, जो वहां पर आसपास रहते हैं, कम स्किल वाले जो लोग हैं, उनको काम करने का जो मौका फैक्ट्री में नहीं मिल रहा है, एक चीज है। लेकिन मैं ऐसा भी मानता हूं कि ऐसा होने से, ऐसी कुछ जब घटना बनती है, ये मुझे लगता है कि एक टेम्पररी फिनोमिना है। और अनएम्प्लॉयमेंट की बात तो है, लेकिन ये एक घटना के साथ पूरी चीजें बाहर आ जाना, ये जरा ताज्जुब लगता है मुझे।
ये मामला अगर नहीं सुलझा आने वाले दिनों के अंदर तो गुजरात के अंदर हालात और भी खराब होते हैं, क्योंकि साउथ गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा पर प्रांतीय मजदूर वहां पे काम कर रहे हैं, और अगर इस मामले को अगर सुलझाया नहीं गया तो गुजरात की इकोनॉमी पे काफी असर पड़ सकता है।
स्थानीय पत्रकार भार्गव पारिक से बात कर रही थी मानसी दास। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में अदालत के आदेश के बाद 5 दरोगा समेत 13 पुलिसकर्मियों के खिलाफ डकैती का मामला दर्ज किया गया है। 1 महीने पहले पुलिस ने मुठभेड़ की बात कहते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया था, लेकिन उस युवक के परिजनों का कहना है कि पुलिस उसे घर से उठाकर ले गई थी। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं समीर आत्मज मिश्र।
बुलंदशहर जिले की खुर्जा थाने की पुलिस ने मोहम्मद मुश्तकीम नाम के एक व्यक्ति को नारकोटिक्स और अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त जैसे मामलों में गिरफ्तार करने का दावा किया था। पुलिस ने यह भी दावा किया था कि गिरफ्तारी के दौरान उसे मुश्तकीम के साथ मुठभेड़ भी करनी पड़ी। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद मुश्तकीम के घर पर छापा मारा और नकदी समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद करने का भी दावा किया, लेकिन मुश्तकीम के परिजनों ने इस पूरे मामले को फर्जी बताते हुए इस पर आपत्ति जताई और पुलिस में सुनवाई न होने पर अदालत की शरण ली। बुलंदशहर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने परिजनों की आपत्ति को सही पाया और इन सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 395 के तहत केस दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने पुलिस वालों पर फर्जी सबूतों के जरिए जालसाजी और गलत तरीके से बंदी बनाए जाने संबंधी धाराएं भी लगाई हैं, लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कोर्ट को इस मामले में दिग्भ्रमित किया गया है। बुलंदशहर के पुलिस अधीक्षक देहात रईस अहमद कहते हैं,
वादी ने न्यायालय के समक्ष अधूरे तथ्यों को रख करके मुकदमा पंजीकृत कराया है। हालांकि इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है सर्किल ऑफिसर के द्वारा और जल्द ही समस्त तथ्यों के साथ इस केस का अनावरण किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो पाएगा कि उसको कहां से उठाया गया है और किन हालातों में उसको जेल।
मुश्तकीम के परिजनों के मुताबिक पुलिस वालों के साथ उसका कुछ पैसों के लेन देन का मामला था। मुश्तकीम का पुलिस वालों से पैसा मांगना उन्हें नागवार गुजरा और फिर उसे फर्जी तरीके से मुकदमे में फंसाने की साजिश रची गई। मुश्तकीम के चाचा शब्बीर अहमद का आरोप है कि पुलिस वालों ने उसे मुठभेड़ के जरिए गिरफ्तार नहीं किया बल्कि घर से ही उठा ले गए।
पैसे निकल गए जबरदस्ती इस अलवारी से खुलवा कर पुलिस ने, और पैसे निकालने के बाद वो बोले कि तुम गैर कानूनी काम करते हो, ये हवा महल बना रखा है तुमने। 80,000 रूपए यहाँ से निकाले, 4,700 रूपए मुश्तकीम की जेब में थे, प्लस 2 मोटरसाइकिल ले गए हमारी और 1 मोबाइल ले गए जिसमें चोरी की बताई वो मोबाइल, वो मोटरसाइकिल। नवेडा की एक केस लगा दिया, नशीला पाउडर लगा दिया और समझे पिस्टलें लगा दी। और हमारा मुस्तकीम जो बिरादर का मुखिया है, हमारी बिरादर गरीब है, हम 100 रुपए महीना हर घर से पूरी बिरादर इकट्ठा करती है।
परिवार वालों के मुताबिक मुश्तकीम धोबी का काम करता था और पुलिस वालों के भी कपड़े साफ करता था। इसी का पैसा पुलिस वालों पर बकाया था जिसकी वो मांग कर रहा था। घर वालों की माने तो जो रुपए पुलिस वालों ने मुश्तकीम के घर से बरामद किए हैं वो उसे धोबी समाज से मिले चंदे के थे, जिनकी रसीदें भी परिवार वाले दिखाते हैं। बहरहाल सच क्या है ये तो जांच और अदालत में सुनवाई के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फर्जी एनकाउंटर जैसे तमाम आरोप झेल रही यूपी पुलिस की इस मामले ने और फजीहत करा दी है। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
कार्यक्रम में आगे दिल्ली से छपने वाले अखबारों की समीक्षा करेंगे हम। उससे पहले चूंकि आज रविवार है और हर रविवार हम आपके लिए लेकर आते हैं पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों की साप्ताहिक समीक्षा, जिसे तैयार करते हैं BBC संवाददाता इकबाल अहमद, जिसे हम सुनेंगे अब मोहम्मद शाहिद की जुबानी।
पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों में इस हफ्ते शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, सऊदी अरब और पाकिस्तान के संबंध, पाक प्रशासित कश्मीर के प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर का लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने की खबरें सुर्खियों में रहीं। सबसे पहले बात एक सनसनीखेज दावे की। अखबार दुनिया के अनुसार पाकिस्तान का दावा है कि भारत अपने नियंत्रण वाले कश्मीर में केमिकल हथियार का इस्तेमाल कर रहा है। अखबार ने पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर फैसल के हवाले से ये बात लिखी है। अखबार के अनुसार साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए प्रवक्ता डॉक्टर फैसल ने कहा कि भारतीय सेना ने बांदीपुरा इलाके में केमिकल हथियार का इस्तेमाल किया है, यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए। दूसरी ओर मुस्लिम लीग नून के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की भ्रष्टाचार निरोधी संस्था नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी नैब ने गिरफ्तार कर लिया है। अदालत ने उन्हें 10 दिन के रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया है। अखबार दुनिया के अनुसार शहबाज शरीफ पर आरोप है कि पंजाब के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। नैब ने उन्हें साफ पानी के घोटाले पूछताछ के लिए अपने ऑफिस बुलाया था लेकिन उन्हें आशियाना हाउसिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। अखबार जंग के अनुसार साल 2013 में पंजाब सरकार ने कम आमदनी वाले सरकारी कर्मचारियों को घर देने के लिए आशियाना हाउसिंग स्कीम शुरू की थी, जिसके तहत 6,400 घर बनाए जाने थे लेकिन इसमें भ्रष्टाचार की खबरें आ रही थी। नैब के अनुसार इसमें 14 अरब पाकिस्तानी रुपए का घोटाला हुआ है। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के एक हेलीकॉप्टर के लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सीमा में घुसने की खबर भी सुर्खियों में रही। अखबार जंग के मुताबिक राजा फारूक हैदर ने कहा कि उनका हेलीकॉप्टर भारतीय सीमा में दाखिल नहीं हुआ था और भारत ने बगैर किसी उकसावे के फायरिंग कर दी, लेकिन भारत का दावा है कि हेलीकॉप्टर ने भारतीय सीमा का उल्लंघन किया था। अखबार लिखता है कि भारत इस क्षेत्र में जंग की चिंगारी भड़काने में किस कदर बेताब है, इसकी एक झलक राजा फारूक हैदर के हेलीकॉप्टर पर भारतीय फौज की फायरिंग से देखी जा सकती है। अखबार आगे लिखता है कि सच्चाई यह है कि मोदी सरकार को चुनाव में जाना है और इतिहास बताता है कि हर चुनावी दंगल में पाकिस्तान विरोधी प्रचार करना मामूली बात समझी जाती है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से तेल उधार देने की मांग की है। अखबार दुनिया के अनुसार सऊदी वित्त मंत्री ने इस सप्ताह पाकिस्तान का दौरा किया था जब पाकिस्तान ने उनसे यह अपील की। अखबार के अनुसार पाकिस्तान को आर्थिक संकट से उबारने के लिए उसने सऊदी अरब से अगले 3 महीने तक रोजाना 2 लाख बैरल तेल उधार देने का आग्रह किया है। गौरतलब है कि इस समय सऊदी अरब रोजाना 1,10,000 बैरल तेल 1 महीने के उधार पर पाकिस्तान को दे रहा है।
ये थे मोहम्मद शाहिद, जो पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों की साप्ताहिक समीक्षा पेश कर रहे थे। और अब दिल्ली से छपने वाले अखबार आज के अखबार क्या सुर्खियां बयां कर रहे हैं बताने के लिए नवीन नेगी कई अखबारों के साथ स्टूडियो में आ चुके हैं।
जी संदीप जी, आज दिल्ली से छपे अखबारों में अगर हम सबसे पहले जिस खबर को लेंगे वो महिलाओं से जुड़ी हुई है और #MeToo जो कि दुनिया भर में काफ़ी प्रचलित हुआ, इस काफ़ी ज़्यादा एक अभियान ने जोर पकड़ा जिसमें यौन उत्पीड़न के अनुभवों को साझा कर रही हैं दुनिया भर की महिलाएं,
इससे वही अब भारत में भी हो रहा है।
जी, ये अब भारत में शुरू हो गया है अभियान और इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पहले पन्ने पर सबसे ऊपर इस खबर को जो है प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इस खबर में लिखा गया है कि नेशनल अवार्ड जीतने वाली बॉलीवुड फिल्म क्वीन के डायरेक्टर विकास बहल पर एक महिला ने यौन दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाए हैं। अखबार लिखता है कि एक महिला ने आरोप लगाए हैं कि साल 2015 में गोवा में विकास बहल ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। उस समय वह महिला फैंटम फिल्म प्रोडक्शन के साथ काम कर रही थी और विकास बहल भी इस प्रोडक्शन फिल्म प्रोडक्शन हाउस का हिस्सा है। इसी प्रोडक्शन हाउस के साथ जुड़े हुए हैं फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप।
विकास बहल का कोई बयान है इसके जवाब में?
अभी तक विकास बहल की तरफ से तो कोई जवाब इस खबर में नहीं है और कोई हमें मिला भी नहीं है, लेकिन फैंटम फिल्म प्रोडक्शन की ओर से जुड़े हुए फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप ने इन महिला के आरोपों की पुष्टि की है और कहा है कि उन्हें बड़ी हैरानी है, बड़े ही वो परेशान हैं कि इस तरह के आरोप लग रहे हैं। और दूसरे खबरों की तरफ बढ़ें तो देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा कल हो गई। चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा कर दी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई एक खबर है जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अब गठबंधन नहीं हो पाएगा, ऐसी खबर जनसत्ता में छपी है। इस खबर के अनुसार सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ किया कि वे कांग्रेस के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि उन्होंने कांग्रेस का बहुत इंतजार किया और अब वे बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन करने की बात कर रहे हैं। एक बड़ी ही दिलचस्प खबर हिंदुस्तान टाइम्स में छपी है जिसमें दिल्ली मेट्रो में सफ़र करने वाले यात्रियों पर जुर्माने से जुड़ी हुई ये बात बताई गई है। इस खबर के अनुसार इस साल अगस्त महीने तक 22,000 से अधिक यात्रियों को मेट्रो के फर्श पर बैठने के लिए जुर्माना लगाया गया था।
मेट्रो के फर्श पर बैठने की वजह से?
जी,
भीड़ बहुत होती है मेट्रो में।
बिल्कुल।
दिल्ली से छपने वाले अखबारों की समीक्षा सुन रहे थे आप नवीन नेगी की जुबानी। और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त।
5 विकेट लिया, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेड बॉल बहुत क्लोज है मेरे और मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं टेस्ट क्रिकेट लंबा खेलूं और पूरा फोकस उसी पे है। अब इंग्लैंड से वापस आया तो उसके बाद वहां पे कंडीशंस थोड़ा डिफरेंट थे, शायद मैंने अच्छा बॉल डाल सकता था वहां पर नहीं हुआ वैसे। फिर उसके बाद यहां के इंडिया के साथ 2 मैच खेले, कमबैक अच्छा किया तो यहां पे भी आके फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा वैसा था क्योंकि एडजस्ट करने में टाइम लगता है आपको। फिर सेकेंड इनिंग में आया तो अच्छा बॉल उड़ा था तो अच्छा लगता है।
ये शब्द है भारत के चाइना बैन स्पिनर कुलदीप यादव के, जिन्होंने राजकोट में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन कल वेस्ट इंडीज की दूसरी पारी में 57 रन देकर 5 विकेट झटके, जिसकी मदद से भारत ने वेस्ट इंडीज को एक पारी और 272 रन से करारी मात दी। कल वेस्ट इंडीज ने अपनी पहली पारी 6 विकेट पर 94 रन से आगे शुरू की जो 48 ओवर में ही 181 रन पर समाप्त हो गई, जबकि भारत ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 649 रन बनाकर समाप्त घोषित की थी। पहली पारी के आधार पर 468 रन से पिछड़ने के बाद फॉलो ऑन का सामना करते हुए वेस्ट इंडीज की दूसरी पारी भी ताश के पत्तों की तरह 50.5 ओवर में 196 रन पर ढेर हो गई। वेस्ट इंडीज के सलामी बल्लेबाज किरेन पावल ने 83 रन बनाए, उनके अलावा कोई बल्लेबाज विकेट पर टिकने की हिम्मत और धैर्य नहीं दिखा सका। कुलदीप यादव के 5 विकेट के अलावा रविंद्र जडेजा ने 35 रन देकर 3 और आर अश्विन ने 71 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। उधर आज से प्रो कबड्डी लीग के 6 सीजन की शुरुआत होने जा रही है। इस बार इसमें 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। मौजूदा चैंपियन पटना पायरेट्स अपना खिताब बचाने के लिए जी जान लगाएगी, वो पिछले 3 सीजन से चैंपियन है। पटना की टीम में प्रदीप नरवाल के अलावा दीपक नरवाल, विकास काले और जवाहर डागर जैसे धुरंधर खिलाड़ी शामिल हैं। वहीं बांग्लादेश में जारी अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल आज भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा।
और इसके साथ ही वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का। चलते चलते खास खास खबरें एक बार फिर सुनते हैं नवीन नेगी से।
बीबीसी समाचार। अमरीकी संसद में कल सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर ब्रेट कैवनॉ के नाम को मंजूरी मिल गई। ब्रेट को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समर्थन दिया था, इसे ट्रंप की जीत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि डेमोक्रेटिक सांसद उनकी नियुक्ति पर सवाल उठा रहे हैं। फेसबुक ने कहा है कि वह भारत में अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले राजनीतिक एजेंडे को रोकने के मकसद से एक टास्क फोर्स का गठन करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो उत्तर कोरिया की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वे उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के साथ मुलाकात करेंगे। उत्तर कोरिया उनके पूर्वी एशिया दौरे का पहला पड़ाव है। सऊदी अरब के जाने माने पत्रकार जमाल खाशोगी की गुमशुदगी का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। उनकी तलाश अभी भी जारी है। ब्राजील में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की पूर्व संध्या में दक्षिणपंथी दल के उम्मीदवार जेयर बोल्सोनारो ने कहा कि वे अपराध और हत्याओं के मामलों से निपटने पर जोर देंगे। नाइजीरिया के मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी को ऑल प्रोग्रेसिव कांग्रेस पार्टी की ओर से अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार के तौर पर चुना गया है। हालांकि उनके विपक्षी का फैसला अभी तक नहीं हो पाया। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान। अगला प्रसारण दिन भर शाम 7:30 बजे। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया में पल पल बदलती खबरों के लिए bbchindi.com हमेशा आपके साथ है।